माही जो बड़बड़ा रही थी, जैसे ही उसे दीक्षांत के जूते दिखाई दिए, वो डर से और ज्यादा खुद में सिमट गई। उसने डरते हुए ही अपनी लाल आंखों को उठाकर दीक्षांत के चेहरे को देखा, जिस पर इस वक्त कोई भाव नहीं थे। दीक्षांत धीमे कदमों से माही के सामने जाकर बैठ गया, जिससे माही बिल्कुल दीवार से चिपक कर बोली, मैं अपनी कसम खाकर बोल रही हूँ, मैंने जानबूझकर नहीं किया था। हाँ, मुझे उसे पर गुस्सा आया था, पर मेरा कॉफ़ी गिराने का कोई इरादा नहीं था। दीक्षांत ने अपना हाथ माही की तरफ बढ़ाया तो माही ने कसकर अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक लिया। प्लीज डोंट हर्ट, उसने जिस दर्द से इन शब्दों को बोला था, दीक्षांत का हाथ अपने आप अपनी जगह रुक चुका था। उसने उस हाथ को झट से पीछे खींच लिया और फिर तेज आवाज में बोला, रोना बंद करो, क्या मैंने तुम पर हाथ उठाया है इस वक्त जो तुम रो रही हो? भाभी जान बोल रही थी कि मैं तुमसे दूर रहूं, और मैं उनकी कोई बात नहीं टालता हूं, सो अब मैं तुमसे दूर ही रहूंगा। ज्यादा रोने की और तमाशा करने की जरूरत नहीं है, चुपचाप से यहां रहो, और मेरी कंपनी को जो लॉस हुआ है वो तो तुम्हें चुकाना ही पड़ेगा। मैं अभी भी उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूं, टोटल अमाउंट तुम्हें बता दूंगा। इतना बोलकर दीक्षांत उठा और झट से कमरे से बाहर चला गया। दीक्षांत आंधी की रफ्तार से कमरे में आया था और तूफान की रफ्तार से बाहर भी चला गया। माही हिचकियां लेते हुए दीक्षांत जिस तरफ गया उधर देख रही थी। फिर उसने अपने आंसू पूछ लिए और दिल पर हाथ रखते हुए बोली, थैंक गॉड वो मुझ पर चिल्लाया नहीं। इतना बोलकर वो संभलते हुए उठी और टेबल की तरफ बढ़ गई, जहां एक पानी का जग और ग्लास रखा था। उसने जग से ग्लास में पानी भरा और एक सांस में पूरा ग्लास पी गई। उसकी पूरी बॉडी अब तक पसीने से लथपथ हो चुकी थी। उसने अपने माथे पर हाथ रखकर आंखें बंद करते हुए कहा, ये पैनिक अटैक्स आना फिर से शुरू हो गए हैं, मुझे लगता है डॉक्टर तनुजा से फिर से बात करनी पड़ेगी। इतना बोलकर वो बेड पर रखे अपने सूटकेस की तरफ बढ़ गई और उसमें से अपने लिए एक हल्की सी ड्रेस निकालकर बाथरूम की तरफ बढ़ गई, क्योंकि वो इस वक्त काफ़ी थक गई थी। उसे लग रहा था उसे अभी शावर की सख्त ज़रूरत है। वहीं दीक्षांत वहां से निकलकर अपने कमरे में आ गया था, जहां रूम से अटैच्ड एक बार था। वो तुरंत ही उसके अंदर जाते हुए एक बॉटल निकालता है और उसका ढक्कन खोलते हुए उसे अपने मुंह से लगा लेता है। वो धड़ाम से सोफे पर आकर बैठता है। उसने करीब 10 मिनट में आधी बॉटल खत्म कर दी थी। उसने वो बॉटल लगभग पटकते हुए सामने रखी टेबल पर रखी और फिर दोनों हाथों से अपने बाल पकड़ते हुए कहा कि ये सब क्या हो रहा है, उसे रोते हुए देखकर मैं क्यों परेशान हो रहा हूँ और मैंने उस पर गुस्सा क्यों नहीं किया। मुझे उसे दो थप्पड़ लगाने चाहिए थे, उसकी हिम्मत कैसे हुई भाभी जान पर कॉफ़ी गिराने की। पता नहीं क्यों, पर माही को रोते देखकर दीक्षांत के सीने में अलग ही जलन हो रही थी। उसने फिर से वो बॉटल उठाई और अपने होठों से लगाते हुए एक ही सांस में इस बार उसे पूरा खत्म कर दिया। अब तक उसे नशा भी चढ़ चुका था। वो वहीं सोफे पर सिमट कर लेट गया। उसकी और माही की स्टोरी काफ़ी सिमिलर थी। उसके पास भी फैमिली के नाम पर कोई नहीं था और माही के पास भी। इस वजह से शायद इस वक्त माही का किरदार उसे ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहा था। बस फ़र्क इतना था कि दीक्षांत को संभालने के लिए उसे रावत फैमिली मिल गई थी, जो इतनी अच्छी थी कि उसने उसे कभी फिर महसूस नहीं होने दिया कि उसके पास अपनी कोई फैमिली नहीं है। और माही के पास शायद ऐसा लकी परिवार कहीं से आया नहीं और वो इस दलदल में फंसती चली गई। दीक्षांत को अब भी माही का डर से कम अपना याद आ रहा था, उसका बड़बड़ाना कि मुझे नफ़रत मत करो, जिसे महसूस कर अब दीक्षांत को नींद भी नहीं आ रही थी। वो फिर से सोफे से उठा और लड़खड़ाते कदमों से ही बाथरूम की तरफ बढ़ गया, ताकि कोल्ड शावर ले सके, शायद उसे बेहतर फील हो। वहीं दूसरी तरफ समर्थ इस वक्त कल्याण सिंह के कमरे में था। वो उनके पांव दबा रहा था। कल्याण सिंह बेड पर लेटे थे। उन्होंने समर्थ का चेहरा देखते हुए कहा, तुम कितनी भी मनाने की कोशिश कर लो, मैं इस शादी के रिश्ते को नहीं टूटने दूंगा। समर्थ ने रोनी शक्ल बनाकर कहा, कल्याण सिंह जी कैसी बातें कर रहे हैं आप, प्लीज़ मेरी पूरी ज़िंदगी आगे बढ़ी है, आप चाहते हैं मैं उस लड़की से शादी कर लूं, और आपको एक बात बताऊं, वो मुझसे उम्र में भी बड़ी है। कल्याण सिंह जी ने करवट बदलते हुए कहा, अच्छी बात है ना, तुम जैसे नालायक को एक समझदार लड़की ही चाहिए, जो दो थप्पड़ लगाकर तुम्हें सब कुछ समझा सके कि क्या गलत है और क्या सही है। बस बहुत हो गया, अब जाओ यहाँ से, मुझे मक्खन लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। समर्थ को समझ नहीं आ रहा था कल्याण सिंह को कैसे समझाए कि त्रिशा उसके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, उसके लिए ही नहीं वो पूरे परिवार के लिए ठीक नहीं है। इस वक्त उसकी बातें कोई नहीं सुन रहा था, क्योंकि सबको लग रहा था कि समर्थ ही झूठ बोल रहा था, उसे ही त्रिशा से प्रॉब्लम है। वहीं दूसरी तरफ त्रिशा मल्होत्रा हाउस में ये गुड न्यूज़ दे रही थी कि उसकी शादी रावत फैमिली के छोटे बेटे से होने वाली है और वो शादी से बहुत ज़्यादा खुश भी है। मीनाक्षी अपनी बेटी की खुशी में खुश हो चुकी थी, पर महेश को इन सब में बहुत गड़बड़ लग रही थी। उन्होंने फ़ोन मीनाक्षी से लेते हुए कहा, बेटा तुम श्योर हो ना कि तुम्हें समर्थ रावत से शादी करनी है? त्रिशा ने लंबी सांस छोड़ते हुए कहा, जी दादा मैं 100% श्योर हूँ कि मुझे समर्थ रावत से ही शादी करनी है और वो भी अगले 3 दिनों में। आप लोग पूरी तैयारी कर लीजिए यहाँ आने के लिए, क्योंकि मेरी कोई भी रस्म मल्होत्रा हाउस में नहीं होने वाली है, जो होगा सब कुछ वहीं होगा। ये बात मीनाक्षी को थोड़ी अटपटी लगी। उसने इस बार थोड़ा हैरानी से कहा, पर बेटा बेटी की डोली अगर घर से उठे वही ज़्यादा अच्छा लगता है, ऐसे तुम अपने ससुराल में ही शादी करना चाहती हो? त्रिशा ने इस बार झुंझुलाहट के साथ कहा, ओ मॉम अब तो सब बड़ा हो गया है, सब मैरिज गार्डन में शादी करने लगे हैं, जहाँ लड़का भी होता है और लड़की भी होती है। डोली वोली उठाना, घोड़ी पर चढ़ के आना, ये सब अब नहीं होता है और मुझे भी ऐसे ही मॉडर्न शादी करनी है।